ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 8 मार्च 2026 के लिए है। विषय आदमी स्वर्णपथ योहन्ना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रगत नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उत्तरदायी ध्यान भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के नियन फूलता है, जो पांव लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवियों पर युग युग और उसका धाम उनके नाती पुत्तों पर प्रगत होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। पाठ उपदेश बाइबल में से प्रेरितों के काम। स्तिफनस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वो सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीन और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए। प्रेरितों के काम। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले, जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्य अद्विक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम को कौन सा स्थान होगा? भविष्य अद्विक्ता में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? और उन्होंने उस धार्मिक की आज्ञा मन को पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हो। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और वो स्तिफनस को पथरावा करने लगे और वो स्तिफनस को पथरावा करते रहे। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से उसने पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया। प्रेरितों के काम। और शाऊल उसकी मौत के लिए राजी था, और भक्तों ने स्तिफनस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। प्रेरितों के काम। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री कि जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो यकायक आकाश से उसकी चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उसने पूछा दुबा, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। तब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वो उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। दमिश्क में हनन्या नाम एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधा कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लग गया दोबारा और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम। परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बिगाड़ कर दिए। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और अखनीम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथरावा किया और समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दर्बे को चला गया। प्रेरितों के काम। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं क्योंकि उसके प्राण उसी में हैं। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पोप हट गई। फिर वो चला गया और वो उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। रोमियो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरुण परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। भगवान, ईश्वरीय सिद्धांत, जीवन, सत्य, प्रेम, आत्मा, रूह, मन। मनुष्य भगवान का आध्यात्मिक विचार अलौकिक परिपूर्ण हमेशा रहने वाला। पिता माता देवता का नाम है जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इंगित करता है, जैसा कि प्रीरत ने उसे इन शब्दों में व्यक्त किया है जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। आत्मा का ब्रह्मांड दोबारा। आत्मा का ब्रह्मांड आध्यात्मिक पुरानियों से भरा हुआ है और इसका शासन दिव्य विज्ञान है। मनुष्य निम्नातम नहीं परंतु उच्चतम मानसिक गुणों की संतान है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति संपर्ण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में अविशोषण और उसके पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं, लेकिन मनुष्य में बढ़े हुए व्यक्तित्व विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति। इतिहास दुखों तकलीफों के रिकॉर्ड से भरा है। शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। इंसान सच को स्टील या खंभे से मारने की बेकार कोशिश करते हैं, लेकिन गलती सिर्फ आत्मा की तलवार के सामने ही हारती है। शहीद वो इंसानी कड़ी हैं जो धर्म के इतिहास में एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ते हैं। वो धरती के प्रकाशमान लोग हैं जो दुनियावी एहसास के माहौल को साफ और दुर्लभ बनाने और इंसानियत में शुद्ध आदर्श उभारने का काम करते हैं। मसीही शहीद क्रिश्चियन साइंस के पैगंबर थे। दिव्य सत्य की उठान और अभिषेक शक्ति के माध्यम से उन्होंने भावतिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, एक ऐसी विजय जिसे केवल विज्ञान ही समझ सकता है। तर्सीस के शाऊल ने मसीह मार्गीय या सत्य को देखा केवल तभी जब उसके अधिकार की निश्चित भावना एक आध्यात्मिक अर्थ के लिए झुकी जो हमेशा सही होती है। फिर वो आदमी बदल गया। विचार ने एक महान दृष्टिकोण ग्रहण किया और उसका जीवन अधिक आध्यात्मिक हो गया। जिन मसीहियों का धर्म वो नहीं समझते थे, उन्हें सताने में उन्होंने जो गलत काम किया था उसे वो समझ गया और नम्रता से उसे पौलुस का नया नाम मिला। उसने पहली बार प्रेम के सच्चे विचार को देखा और दिव्य विज्ञान का पाठ सीखा। हमारे भावतिक मानव सिद्धांत विज्ञान से वंचित हैं। ईश्वर की सच्ची समझ आध्यात्मिक है। ये जीत की कब्र को लूटती है। ये उन झूठे सबूतों को नष्ट कर देती है जो विचारों को गुमराह करते हैं और अनय देवताओं या अनय तथाकथित शक्तियों जैसे पदार्थ, बीमारी, पाप और मृत्यु की ओर इशारा करते हैं जो एक आत्मा से श्रेष्ठ या विपरीत हैं। सत्य अध्यात्म रूप से समझे जाने पर वैज्ञानिक रूप से समझे जाते हैं। ये गलती दूर करता है और बीमारों को ठीक करता है। एक ईश्वर एक मान उस शक्ति को प्रकट करता है जो बीमारी को ठीक करती है और पवित्र शास्त्र की इन बातों को पूरा करती है। मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूँ तथा मुझे छुड़ौती मिली है। जैसा आदमी सोचता है वैसा ही वो है। मन वो सब है जो महसूस करता है, कार्य करता है या कार्रवाई को बाधित करता है। इससे अनभिज्ञ या अपनी निहित जिम्मेदारी से हटाने के लिए उपचार का प्रयास गलत पक्ष पर किया जाता है और इस प्रकार शरीर पर सुचित नियंत्रण खो जाता है। रोमियो को लिखी अपनी पत्री में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। भगवान की समानता जिससे हम आपके माध्यम से दृष्टि खो देते हैं जो सत्य के आध्यात्मिक अर्थ को उद्घाटित करता है, और हम इस समानता का एहसास तभी करते हैं जब हम पाप को कम करते हैं और मनुष्य की विरासत को साबित करते हैं, भगवान के बेटों की स्वतंत्रता मानते हैं। मनुष्य आत्मा के लिए भावतिक आवास नहीं है, वो स्वयं आध्यात्मिक है, प्राण आत्मा होने के कारण ना तो अपूर्ण है और ना ही भावतिक। जब स्थिति मौजूद होती है जिसे आप कहते हैं कि बीमारी को प्रेरित करता है, चाहे वो हवा, व्यायाम, अनुवंशिकता, छूत या दुर्घटना हो, तो अपने कार्यालय को कुली के रूप में प्रदर्शन करें और इन अस्वास्थ्य कार विचारों और भय को बंद करें। नश्वर मन से अपमानजनक त्रुटियों को बाहर करें, तब शरीर उनसे पीड़ित नहीं हो सकता। दुख या सुख की बात मन से आती है और जैसे चौकीदार अपना पट छोड़ देता है, हम घुसपैठ की धारणा को स्वीकार करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ईश्वरीय सहायता के माध्यम से हम इस प्रवेश द्वार को मना कर सकते हैं। अनंत ना कभी शुरू हुआ और ना कभी खत्म होगा। मन और उसके स्वरूपों का सत्यानाश कभी नहीं हो सकता। मनुष्य एक पेंडुलम नहीं है जो बुराई और भलाई, खुशी और दुख, बीमारी और स्वास्थ्य, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। सही और अमर उनके निर्माता की शाश्वत समानता है। मनुष्य किसी भी तरह से अपूर्णता से उठने वाले पदार्थ के कीटाणुओं से नहीं है, और आत्मा तो उसके मूल से ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। धारा अपने स्रोत से ऊपर नहीं उठती है। 100 वर्षों से जीवन का माप युवाओं को लौटाता है और उम्र के लिए कुरूपता देता है। पुण्य का अज्वल सूर्य और होने के साथ सत्य सह अस्तित्व घटता हुआ सूरज उसकी शाश्वत दोपहर है, जो एक गिरते सूरज से अनैच्छुक है। भावतिक के रूप में सुंदरिय की कशंक भावना फीकी पड़ जाती है। आत्मा की चमक अज्वल और अपूर्ण चमक के साथ उत्कीर्ण भावना पर भोर होनी चाहिए। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है। सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। भगवान के साथ विश्वास और शाश्वत के रूप में पुरुष और महिला हमेशा के लिए अनंत पिता माता भगवान की महिमा में परिलक्षित होते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओ से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।